नमस्कार
नमस्कार।
आज हम अखंड ज्योति पत्रिका में प्रकाशित पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन पर बात करने वाले हैं।
जी।
शीर्षक है नया व्यक्ति बनेगा नया युग आएगा। ये उद्बोधन 1979 का है। सोचिए वो समय जब भारत अपनी आजादी के बाद एक तरह से नव निर्माण के दौर से गुजर रहा था।
बिल्कुल, और उस समय पूज्य गुरुदेव ने जो बात कही थी, हजार साल की गुलामी उसके क्या असर हुए इस पर ध्यान दिलाते हुए उन्होंने भविष्य निर्माण की एक दिशा दी।
और उसका मूल मंत्र, जैसा कि शीर्षक से ही जाहिर है, था व्यक्ति बदलेगा तो युग बदलेगा।
हाँ एकदम, उन्होंने ये साफ किया कि सिर्फ बाहर की चीजें मतलब राजनीतिक या आर्थिक ढांचे बदलने से काम नहीं चलेगा, वो पर्याप्त नहीं है।
अच्छा
जी।
राजनीति बाहरी व्यवस्था देखती है, जैसे इकोनॉमी हो गई, कानून हो गया
जी,
लेकिन इंसान के अंदर की दुनिया, उसकी आस्था, उसके विचार, उसकी आदतें, इनको बेहतर बनाना, उत्कृष्टता की तरफ ले जाना, ये काम तो एक जागे हुए धर्मतंत्र का है। धर्मतंत्र का।
हाँ, और पूज्य गुरुदेव के अनुसार युग निर्माण योजना ने इसी नैतिक और आध्यात्मिक तंत्र को, इसी धर्मतंत्र को जगाने का बीड़ा उठाया था। तो आज की हमारी ये चर्चा इसी पर है कि कैसे अंदर के बदलाव से युग बदलता है।
ये बहुत दिलचस्प है कि समस्या की जड़ व्यक्ति के अंदर खोजी जा रही है। तो पूज्य गुरुदेव के हिसाब से समस्या की असली जड़ थी क्या फिर, और उसका हल, उसका रास्ता क्या सुझाया उन्होंने?
देखिए, उन्होंने बहुत सीधे तौर पर कहा था, भारत इतने लंबे समय तक गुलाम क्यों रहा? उसका एक मुख्य कारण था लोगों का अंदरूनी खोखलापन।
अंदरूनी खोखलापन मतलब?
मतलब व्यक्तित्व में कमी, पात्रता में कमी। जैसा मैंने अभी कहा, राजनीति तो बाहरी ढांचा ठीक कर सकती है, कर भी देती है कई बार, पर अगर व्यक्ति अंदर से मजबूत नहीं है तो बाहरी व्यवस्थाएं भी टिक नहीं पाएंगी।
सही बात है।
तो मनुष्य की आस्था, उसके विचार, उसके कर्म, इन्हें सही दिशा देना, उन्हें श्रेष्ठ बनाना, ये काम जैसा उन्होंने कहा परिष्कृत धर्मतंत्र का है। और युग निर्माण योजना इसी धर्मतंत्र का एक प्रैक्टिकल, एक व्यावहारिक रूप थी। लक्ष्य था व्यक्ति की इन्हीं अंदरूनी कमजोरियों को दूर करना, उसे सशक्त बनाना।
तो जब पूज्य गुरुदेव ये कहते थे युग निर्माण, इसका ठीक ठीक मतलब क्या था? क्या ये कोई दूर के भविष्य की कल्पना भर थी, या वर्तमान में ही कुछ करने की बात थी, और ये होगा कैसे संभव?
नहीं, ये कल्पना नहीं थी। युग निर्माण का सीधा मतलब है एक नया, एक बेहतर समाज बनाना। और समाज बनता किससे है? व्यक्तियों से ही ना।
हाँ बिल्कुल।
तो नए समाज के लिए ये जरूरी है कि पहले नया व्यक्ति बने। यहीं पर पूज्य गुरुदेव ने व्यक्ति निर्माण, जिसे वो आत्मनिर्माण भी कहते थे, उसके चार आधार बताए, चार स्तंभ।
चार स्तंभ कौन कौन से?
साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। और उन्होंने कहा कि ये चारों अविभाज्य हैं, अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे खेती के लिए।
अच्छा, जैसे खेती। हाँ, उन्होंने खेती का उदाहरण दिया, जैसे अच्छी फसल चाहिए तो जमीन भी चाहिए जो साधना की तरह है, बीज चाहिए वो स्वाध्याय है, खाद पानी वो संयम है, और फिर फसल की सुरक्षा भी तो करनी पड़ती है, वो सेवा है।
वाह, ये तो बहुत सहज उदाहरण है।
हाँ, तो जैसे खेती में चारों चीजें जरूरी हैं, कोई एक भी कम हो तो बात नहीं बनेगी, वैसे ही आत्मनिर्माण के लिए ये चारों स्तंभ, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, जरूरी है। एक भी कमजोर पड़ा तो व्यक्ति अधूरा रह जाएगा।
ये चार स्तंभ व्यक्तिगत स्तर पर तो समझ में आ गए, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में इनको उतारने की कोशिश कर सकता है, लेकिन पूज्य गुरुदेव का लक्ष्य तो पूरे युग का परिवर्तन था, समाज का बदलाव। तो इस व्यक्तिगत आत्मनिर्माण को समाजव्यापी क्रांति में कैसे बदला जाए, इसके लिए क्या रास्ता बताया उन्होंने?
हाँ, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि व्यक्ति निर्माण नींव है, पर इमारत तो समाज निर्माण की खड़ी करनी है। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने तीन क्रांतियों का आह्वान किया, तीन तरह की क्रांति।
तीन क्रांतियां कौन सी? पहली है विचार क्रांति।
विचार क्रांति।
हाँ, इसका मतलब है कि जो गलत मान्यताएं हैं, अंधविश्वास हैं, नुकसानदेह रूढ़ियां हैं, उनको हटाना और उनकी जगह विवेक, समझदारी, दूरदर्शिता को अपनाना। क्या सही है क्या गलत, ये समझना और सही को अपनाने का साहस पैदा करना। इस सिर्फ पुरानी बातें छोड़ना भर नहीं है, बल्कि सच और तर्क को जीवन में जगह देना है।
सही है। और दूसरी?
दूसरी है नैतिक क्रांति। इसमें जोर है चरित्र पर, कैरेक्टर बिल्डिंग पर। सादा जीवन, उच्च विचार का जो आदर्श है, उसे अपनाना, ताकि समाज में पैसे या पद का बड़प्पन न हो, बल्कि व्यक्ति की आंतरिक महानता, उसके गुणों को महत्व मिले।
जैसे कि?
जैसे संयम, ईमानदारी, जिम्मेदारी, मेहनत करना, इन गुणों का विकास करना, यही नैतिक क्रांति का आधार है।
ठीक है, विचार क्रांति, नैतिक क्रांति, और तीसरी?
और तीसरी है सामाजिक क्रांति। इसका बेस है आत्मवत सर्वभूतेषु, मतलब सब में अपने आप को देखना, और वसुधैव कुटुम्बकम, यानी सारी पृथ्वी ही मेरा परिवार है, ये भावना।
ये तो बहुत ऊंचे आदर्श हैं।
हाँ, और इन्हें जमीन पर उतारने के लिए क्या करना होगा? समाज में बराबरी लानी होगी, पुरुष और नारी के बीच बराबरी, आर्थिक स्तर पर जो भेद हैं उन्हें मिटाना होगा, और साथ ही मिलकर काम करना यानी सहकारिता, और जहां अन्याय हो रहा हो उसके खिलाफ आवाज उठाने का, संघर्ष करने का साहस, वो भी जगाना होगा, जैसे रामायण में जटायु ने अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए जान दे दी थी।
यानी उनका संदेश ये था कि भाई पहले खुद इन सिद्धांतों पर चलो, जीवन में उतारो, और फिर इन विचारों को समाज में फैलाओ। ये सिर्फ अपनी साधना पूजा तक सीमित नहीं था।
हाँ बिल्कुल, क्रम यही था। पहले खुद को सुधारो, खुद का परिष्कार करो, और फिर शिक्षण से, ट्रेनिंग से, और संगठित होकर टोलियां बनाकर इन विचारों को समाज में फैलाओ। उनका मानना था कि डरपोक और कायर बनकर या अन्याय देख के भी चुप रह जाने से समाज नहीं बदलेगा। जहां कहीं भी गलत हो रहा है, अनाचार है, अव्यवस्था है, वहां अपनी क्षमता के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, या तो असहयोग करो या संघर्ष करो। साहस जुटाना ही होगा, हाथ पर हाथ धरे रहने से बदलाव नहीं आता।
मान था कि एक नया युग अगर बनाना है तो उसकी शुरुआत नए श्रेष्ठ व्यक्तियों के निर्माण से करनी होगी।
बिल्कुल, और इसका रास्ता है आत्मनिर्माण के वो चार स्तंभ, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, और समाज में वो तीन क्रांतियां लानी होंगी, विचार क्रांति, नैतिक क्रांति और सामाजिक क्रांति। इसी से ये संभव होगा।
एकदम सही कहा आपने, ये सिर्फ बाहरी हालात बदलने का प्रोग्राम नहीं था, ये तो मनुष्य की अंदर की स्थिति, उसकी सोच, उसके कैरेक्टर, उसके मूल्यों को बदलने का एक गहरा आह्वान था।
वो चाहते थे कि हर व्यक्ति अपने छोटे मोटे निजी फायदे नुकसान से ऊपर उठे, समाज के लिए सोचे, एक बेहतर भविष्य के लिए अपना योगदान दे, क्योंकि आखिर में श्रेष्ठ व्यक्ति ही समाज के नव निर्माण का नेतृत्व कर सकते हैं।
ये विचार तो आज भी शायद पहले से भी कहीं ज्यादा प्रासंगिक लगते हैं। इस सारी चर्चा से एक सवाल मन में आता है जिसे हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं सोचने के लिए।
जी जरूर।
आत्मनिर्माण थी ये जो चार स्तंभ हैं, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, इनमें से आज अभी अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए पहला सबसे आसान कदम कौन सा उठाया जा सकता है, इस पर विचार करना शायद हम सबके लिए सार्थक होगा।
निश्चित रूप से, ये सोचने वाली बात है।